एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे शासक की दुनिया में चल रहे हैं जो इतिहास में कह सकते हैं काफी अनोखा है। एक शक्तिशाली रोमन सम्राट और साथ ही एक गहरा दार्शनिक भी, मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस। सोचिए, रोमन साम्राज्य अपने चरम पर है, लेकिन उसका सम्राट युद्ध के मोर्चे पर है, निजी दुख भी हैं, महामारी फैली हुई है, और इन सबके बीच वो अपने लिए कुछ नोट्स लिख रहा है।
बिल्कुल, वो भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, छापने के लिए नहीं।
हाँ, वही नोट्स जिन्हें हम आज मेडिटेशंस या ध्यान के नाम से जानते हैं, ये बस खुद को राह दिखाने के लिए थे। तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे, मार्कस के जीवन को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 2000 साल बाद भी ये बातें हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं।
बिल्कुल, और देखिए, मार्कस को समझने के लिए ना उनके समय को समझना बहुत जरूरी है। उनका जो वक्त था, मतलब 121 से 180 ईस्वी, वो रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, पैक्स रोमाना।
रोमन शांति।
हाँ, रोमन शांति का वो आखिरी दौर था। ऊपर से तो ये शांति और समृद्धि का समय लगता था, लेकिन मार्कस के शासनकाल में इस शांति पर दबाव बहुत ज्यादा थे।
अच्छा, किस तरह के दबाव?
एक तो वो विनाशकारी एंटोनिन प्लेग फैला था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी, और दूसरा, साम्राज्य की जो उत्तरी सीमाएं थी, वहां लगातार युद्ध चल रहे थे, मार्कोमैनिक युद्ध जिन्हें कहते हैं। तो बाहर से शांति दिखते हुए भी अंदरूनी चुनौतियां कम नहीं थीं।
यानी विरासत में तो शांति मिली, पर उसे बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा, और इसी माहौल में उनका दर्शन, उनकी सोच पनपी।
हाँ बिल्कुल, और उस दौर में यूनानी दर्शन, खासतौर पर स्टोइकवाद जो था, वो रोमन जो अमीर वर्ग था उनमें काफी लोकप्रिय था।
अच्छा,
ये सिर्फ मतलब किताबों की बातें नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका माना जाता था। लोग अलग अलग दर्शनों से विचार लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे।
तो ये स्टोइकवाद मार्कस के लिए भी महत्वपूर्ण था?
बहुत ज्यादा। उन पर दो लोगों का गहरा असर दिखता है। एक तो उनके स्टोइक गुरु थे एपिक्टेटस, वो पहले गुलाम थे, बाद में बहुत प्रभावशाली शिक्षक बने।
ओह
हाँ, और दूसरे थे उनके दत्तक पिता सम्राट एंटोनिनस पायस। उन्होंने एक सदाचारी, एक अच्छे शासक का उदाहरण पेश किया था।
चलिए, मार्कस के जीवन की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। उनका जन्म रोम के एक बड़े परिवार में हुआ, नाम था मार्कस एनियस वेरस। कहते हैं कि बचपन में ही सम्राट हेड्रियन ने उनकी गंभीरता देखी और उन्हें वेरसिमस कहा, मतलब सबसे सच्चा।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, ये दिखाता है कि बचपन से ही उनमें वो बात थी, और जाहिर है उन्हें उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा मिली, यूनानी, लैटिन, कानून, दर्शन, सब कुछ।
उनके जीवन का जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 138 ईस्वी में, जब सम्राट एंटोनिनस पायस ने उन्हें गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया।
सम्राट बनने वाले थे वो?
हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 161 ईस्वी में जब वो सम्राट बने, करीब 40 साल की उम्र में, तो ये उनकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ था।
क्या मतलब, वो बनना नहीं चाहते थे?
उनका मन दर्शन में ज्यादा रमता था, राजनीति में कम। उन्हें ये जिम्मेदारी एक बोझ ज्यादा लगती थी, और उन्होंने सत्ता अपने दत्तक भाई लूसियस वेरस के साथ साझा भी की। रोमन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दो सम्राट एक साथ थे।
वही तो मुझे पता नहीं था, को-एम्परर।
हाँ, सह सम्राट। और जैसा मैंने पहले कहा, उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। निजी दुख भी बहुत थे, उनकी पत्नी फॉस्टीना और कई बच्चों की मृत्यु हुई, प्लेग का विनाश था, लगातार युद्ध का दबाव था।
बापरे।
इतने सब के बावजूद इतिहास उन्हें पांच अच्छे सम्राटों में आखिरी मानता है। बिल्कुल, और ये बात भी बड़ी अजीब लगती है ना कि उन्होंने अपने शासन का ज्यादातर समय डैन्यूब नदी के किनारे युद्ध के मैदान में बिताया। कारुंजाटम जैसे जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, वहीं पर उन्होंने मेडिटेशंस का ज्यादातर हिस्सा लिखा।
युद्ध के बीच में दर्शन।
हाँ बिल्कुल, और यहीं से उनके सबसे महत्वपूर्ण काम मेडिटेशंस की बात आती है। इसका जो असली यूनानी नाम था वो था ता एस्योतोन,
जिसका मतलब
स्वयं के लिए बातें या खुद से की गई बातें। ये कोई किताब नहीं थी जो उन्होंने छापने के लिए लिखी हो, ये उनके निजी नोट्स थे, उनके विचार, उनका आत्ममंथन।
अच्छा।
और ये लिखे भी गए थे कोएन ग्रीक में, जो उस समय विद्वानों और दार्शनिकों की भाषा थी, न कि आम बोलचाल की लैटिन। इससे भी पता चलता है कि ये कितने निजी थे।
तो ये एक तरह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी की पर्सनल डायरी जैसी है, जिसमें वो खुद से पूछ रहा है, खुद को समझा रहा है कि इतनी मुश्किलों के बीच शांत कैसे रहूं।
सही रास्ते पर कैसे चलूं?
एकदम सही कहा आपने। इसकी खासियत यही है, यह हमें एक शासक के मन के अंदर झांकने का मौका देती है। वो कर्तव्य, मौत का डर, बाहरी उथल पुथल, इन सब के बीच अंदरूनी शांति कैसे पाएं, इसी संघर्ष की कहानी है ये। और शायद इसीलिए ये स्टोइक दर्शन का सबसे सच्चा और प्रैक्टिकल दस्तावेज माना जाता है।
तो उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया, बल्कि पुराने स्टोइक विचारों को जिया।
बिल्कुल, मार्कस ने कोई नया फिलोसॉफिकल सिस्टम नहीं दिया, उन्होंने स्टोइक विचारों को अपनी जिंदगी में, अपनी मुश्किल परिस्थितियों में लागू किया, उनको जिया। यही उनकी मौलिकता है। ये किताब इस बात का सबूत है कि दर्शन सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने का एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है।
तो वो कौन से मुख्य स्टोइक सिद्धांत थे जिन्हें मार्कस ने इतना महत्व दिया, जिनकी वो बार बार बात करते हैं मेडिटेशंस में?
देखिए, स्टोइक दर्शन के केंद्र में कुछ बहुत पावरफुल आइडियाज है। पहला और शायद सबसे जरूरी है नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल।
नियंत्रण का द्वंद्व, ये क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है, हमें ये साफ साफ समझना होगा कि क्या चीजें हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। जैसे बाहर क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सेहत कैसी रहेगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब पूरी तरह हमारे वश में नहीं है।
हाँ, ये तो है।
हमारे वश में क्या है? हमारे अपने विचार, हमारे फैसले, हम किसी चीज पर कैसे रिएक्ट करते हैं। स्टोइक कहते हैं कि दुख बाहर की घटनाओं से उतना नहीं होता जितना उनके बारे में हमारी गलत सोच और हमारे रिएक्शन से होता है।
अच्छा,
तो अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है, यानी अपने मन पर, अपनी सोच पर।
ये तो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। हम अक्सर बाहरी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में ही परेशान रहते हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, प्रकृति और तर्क के अनुसार जीना। स्टोइक मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड एक तर्क संगत व्यवस्था, एक लॉजिक जिसे वो लोगोस कहते थे, उससे चलता है। हमारा काम है इस व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर समझदारी और अच्छे गुणों के साथ जीना।
और एक और बात आपने कही थी, मेमेंटो मोरी, मृत्यु का स्मरण। ये थोड़ा डरावना नहीं लगता?
सुनने में शायद लगे, पर इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जिंदगी को सही पर्सपेक्टिव देना है।
कैसे?
जब हम ये याद रखते हैं कि जीवन नश्वर है, हमारा समय लिमिटेड है, तो हम छोटी मोटी बातों, बेकार की चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा ध्यान उन चीजों पे जाता है जो असल में मायने रखती हैं। हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं।
अच्छा, ये इस तरह से काम करता?
हाँ, ये हमें वर्तमान पल में जीने की ताकत देता है, क्योंकि बीता हुआ कल जा चुका, आने वाला कल पता नहीं कैसा हो, सिर्फ आज अभी का पल ही हमारे हाथ में है।
और समाज, दूसरे लोग, उनके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है स्टोइक नजरिए से?
बहुत बड़ी जिम्मेदारी। स्टोइक सार्वभौमिक भाईचारे की बात करते थे। वो मानते थे कि हम सब इंसान तर्क करने वाले प्राणी हैं और एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम समाज की भलाई के लिए, जिसे वो कॉमन गुड कहते थे, उसके लिए काम करें। और इन सब की जड़ में है नैतिक गुण ही सब कुछ है, मतलब सच्ची खुशी और अच्छी जिंदगी पैसे, पद या सेहत जैसी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती।
तो किस पे करती है?
वो निर्भर करती है हमारे अंदरूनी गुणों पर, हमारी समझदारी, विजडम, हमारा न्याय, जस्टिस, हमारा साहस, करेज, और हमारा आत्मसंयम, टेम्परेंस। हालात चाहे जैसे भी हों, एक गुणी, एक सदाचारी जीवन जीना हमेशा मुमकिन है। मार्कस के लिए यही सबसे ऊपर था।
इन सिद्धांतों को उन्होंने सच में जिया। अच्छा, अगर हम उनकी तुलना दूसरे स्टोइक विचारकों से करें, जैसे सेनेका थे या उनके गुरु एपिक्टेटस, तो क्या कुछ खास फर्क नजर आता है?
हाँ, बिल्कुल आता है। जैसे सेनेका को देखें, वो भी बहुत मशहूर स्टोइक थे, लेकिन उनके जीवन में कहीं कहीं राजनीतिक समझौते ज्यादा दिखते हैं। मार्कस अपने सिद्धांतों को लेकर ज्यादा सख्त लगते हैं, खासकर जब हम मेडिटेशंस पढ़ते हैं।
और एपिक्टेटस है?
एपिक्टेटस, जिन्होंने मार्कस को इतना प्रभावित किया, वो एक टीचर थे। उन्होंने स्टोइकवाद सिखाया, मार्कस ने उसे जिया, वो भी सम्राट होने के इतने भारी दबाव और जिम्मेदारियों के साथ। तो मार्कस के लेखन में जो सत्ता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद दिखती है, वो बहुत यूनिक है। वो एक तरह से प्लेटो के दार्शनिक राजा वाले आइडिया के सबसे करीब पहुंचते हैं, जहां ज्ञान और शक्ति एक साथ आते हैं।
तो उनका मुख्य योगदान नए सिद्धांत गढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किल हालात में अमल में लाना था।
बिल्कुल सही। स्टोइकवाद के जो शुरुआती विचारक थे जैसे ज़ेनो या क्रिसिपस, वो ज्यादा अकादमिक थे, तर्कशास्त्र और भौतिकी पर भी लिखते थे। मार्कस का ध्यान पूरी तरह से प्रैक्टिकल था और पर्सनल था। अंदरूनी शांति कैसे मिले, नैतिक उद्देश्य कैसे बना रहें, दुख और नुकसान का सामना कैसे करें, उनका दर्शन कह सकते युद्ध के मैदान में लिखा गया दर्शन है।
इस इतने गहरे और व्यक्तिगत दर्शन की विरासत क्या रही है? क्या मेडिटेशंस हमेशा से इतनी जानी मानी किताब थी?
नहीं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। सदियों तक मेडिटेशंस के बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं थे। ये पुनरुद्धार काल में, मतलब रिनेसांग के टाइम में, फिर से खोजी गई और तब ये यूरोप के बुद्धिजीवियों के बीच बहुत प्रभावशाली बन गई।
अच्छा।
हाँ, फिर ज्ञानोदय एनलाइटमेंट के दौरान इसे एक तर्कसंगत शासन के मॉडल की तरह भी देखा गया।
और आज के समय में इसका क्या हाल है? क्या आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इससे कुछ सीखते हैं?
आज तो इसका असर बहुत ही ज्यादा व्यापक और गहरा है। अब देखिए, मनोविज्ञान में जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसकी कई तकनीकें अनजाने में ही सही मार्कस के विचारों से बहुत मिलती जुलती हैं।
जैसे?
जैसे ये विचार कि हमारे इमोशंस हमारी सोच से पैदा होते हैं और अगर हम अपनी सोच बदलें तो इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टोइक तरीका है।
हाँ, ये तो CBT का मूल सिद्धांत है।
बिल्कुल। फिर बिजनेस स्कूल्स में, मिलिट्री अकेडमियों में उन्हें नैतिक नेतृत्व और दबाव में सही फैसले लेने की केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है।
और आम लोगों के लिए, पर्सनल लेवल पे?
हाँ, पर्सनल लेवल पे तो ये आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प या पर्सनल ग्रोथ किताबों में से एक है। मानसिक मजबूती, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो पाने के लिए लोग इसे बहुत पढ़ते हैं। एक पूरा आधुनिक स्टोइकवाद का आंदोलन चल रहा है जो मार्कस जैसे विचारकों से प्रेरणा लेकर स्टोइक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की बात करता है। जिंदगी में जो तनाव है, अनिश्चितता है, बदलाव है, इन सबसे निपटने के लिए मार्कस के विचार आज भी उतने ही काम के हैं जितने 2000 साल पहले थे।
उनके कुछ मशहूर कथन अगर हम देखें तो शायद उनके दर्शन का निचोड़ समझ आए। कोई ऐसा कथन जो खुशी पर उनके नजरिए को बताता हो?
हाँ, उनका एक बहुत फेमस कोट है, खुशहाल जीवन के लिए बहुत कम चाहिए, ये सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में। सोचिए, ये वो आदमी लिख रहा है जो युद्ध लड़ रहा है, जिसने प्लेग देखा है, अपने बच्चों को खोया है। ये साफ दिखाता है कि खुशी बाहरी हालात पर नहीं, हमारी अंदरूनी सोच पर टिकी है। ये स्टोइकवाद का सार है। एक और विचार है जो मुझे बहुत पसंद है, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन जैसे न बने।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है।
है ना? मतलब बदला लेने की इच्छा में हम खुद भी वैसे ही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं।
राइट।
इसके बजाय अपनी नैतिकता, अपना कैरेक्टर बनाए रखना ही सबसे अच्छा जवाब है।
सही कहा। और कर्म, मतलब एक्शन लेने पर भी उन्होंने कुछ कहा है?
हाँ, उनका एक बड़ा सीधा और दमदार उपदेश है, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें, एक बने।
क्या बात है, मतलब बातें कम, काम ज्यादा।
बिल्कुल। फिलॉसफी सिर्फ पढ़ने या बहस करने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। और इसी से जुड़ा वो नियंत्रण वाला सिद्धांत भी है, आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी, सारी ताकत अंदर है। और मुश्किलों को देखने का उनका नजरिया भी गजब का था। उन्होंने लिखा, क्रिया में बाधा क्रिया को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा होता है वो रास्ता बन जाता है।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि हर रुकावट, हर मुश्किल, चाहे वो किसी का धोखा हो, युद्ध में हार हो, या कोई पर्सनल लॉस, वो हमें कोई ना कोई गुण सीखने का मौका देती है, जैसे धैर्य, साहस या माफ करना। तो जो चीज रास्ता रोक रही थी, वही असल में आगे बढ़ने का रास्ता बन जाती है।
ये तो बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है मुश्किलों को देखने का। ये सारे विचार तो कमाल के हैं, लेकिन क्या मार्कस अरेलियस के जीवन या उनके दर्शन की कोई आलोचना भी होती है? कोई ऐसे पहलू हैं जिन पर सवाल उठते हैं?
हाँ, बिल्कुल है, और उन पर बात करना भी जरूरी है। शायद सबसे बड़ा विरोधाभास या विवाद उनके शासन काल में ईसाइयों पर हुए अत्याचारों को लेकर है।
अच्छा।
हाँ, एक तरफ वो सार्वभौमिक भाईचारे, न्याय, तर्कसंगतता की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके समय में ईसाइयों पर मुकदमे चले, उन्हें सजाएं दी गईं, जस्टिन मार्टर जैसे बड़े नाम शहीद हुए।
तो ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने खुद आदेश दिए थे?
इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये सीधे उनके आदेश पर नहीं हुआ, बल्कि जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने मौजूदा रोमन कानूनों को सख्ती से लागू किया, क्योंकि उस समय ईसाइयों को रोमन सामाजिक व्यवस्था के लिए एक तरह का खतरा माना जाता था। लेकिन फिर भी ये उनके जीवन का एक बहुत जटिल और विवादास्पद पहलू है।
और कोई आलोचना?
दूसरी बड़ी आलोचना उनके उत्तराधिकार के फैसले को लेकर होती है। उन्होंने अपने सगे बेटे कोमोडस को अपना वारिस चुना।
हाँ, कोमोडस के बारे में सुना है। वो तो अच्छा शासक नहीं था।
बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत क्रूर और अयोग्य शासक साबित हुआ। और कई लोग मानते हैं कि मार्कस का ये फैसला स्टोइक सिद्धांतों के खिलाफ था, क्योंकि स्टोइकवाद योग्यता पर जोर देता है, ना कि खून के रिश्ते पर।
हाँ, ये बात तो है।
कोमोडस के शासन को ही रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी माना जाता है। कुछ विद्वान ये भी सवाल उठाते हैं कि एक सम्राट के तौर पर उनका लगातार युद्धों में शामिल रहना क्या उनके शांति और तर्क के दार्शनिक आदर्शों से मेल खाता है?
और आज के समय में ये बहस भी होती है कि उनका दर्शन, जो एक सम्राट के नजरिए से लिखा गया, क्या वो आम आदमी की रोजमर्रा की मुश्किलों पर भी उतना ही लागू होता है?
ये जरूरी सवाल है सोचने के लिए।
पर इन आलोचनाओं के अलावा उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी होंगे, कुछ कम जानी पहचानी बातें।
हाँ, कई हैं। जैसे हमने पहले बात की, वो एक अनिच्छुक सम्राट थे। उन्हें राजनीति से ज्यादा दर्शन पसंद था, और वो शाही जिम्मेदारियों को एक फर्ज की तरह निभाते थे, किसी शौक या ऐश की तरह नहीं। और ये सोचना ही कितना अजीब है कि उन्होंने अपनी सबसे गहरी फिलोसॉफिकल बातें युद्ध के मोर्चे पर लिखी। डेन्यूब नदी के किनारे भयंकर लड़ाइयों के बीच वो सच में एक मिलिट्री फिलोसोफर थे।
सही।
और वो जो एंटोनिन प्लेग फैला था, उस भयंकर महामारी के दौरान उनका जो शांत और व्यवस्थित नेतृत्व था, उसे भी संकट में स्टोइक सिद्धांतों को अमल में लाने का एक उदाहरण माना जाता है।
और कुछ?
एक और दिलचस्प बात उनकी बौद्धिक उदारता थी। उन्होंने एथेंस में फिलोसफी के चार बड़े स्कूलों, प्लेटोनिक, अरिस्टोटेलियन, स्टोइक और एपिक्यूरियन के लिए सरकारी पद और पैसा दिया,
चारों के लिए, जबकि वो खुद स्टोइक थे। अच्छा।
हाँ, चारों के लिए। ये दिखाता है कि वो विचारों की विविधता का सम्मान करते थे। और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एक और उदाहरण ये है कि जब युद्धों और अकाल हाहत के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने शाही खजाने के कीमती सामान, गहने वगैरह बेच दिए थे।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए सार्वजनिक भलाई निजी ऐशो आराम से कहीं ज्यादा जरूरी थी।
मार्कस ऑरेलियस का जीवन और उनका दर्शन वाकई में एक असाधारण संगम है, शक्ति का और ज्ञान का, कर्म का और चिंतन का। वो शायद इतिहास में प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार के सबसे करीब पहुंचने वाले असल इंसान थे। उनका जीवन हमें यही याद दिलाता है कि एक जिम्मेदार, एक सक्रिय जीवन जीते हुए भी अपने अंदर झांकना, आत्ममंथन करना और नैतिक रूप से मजबूत बनना मुमकिन है।
निश्चित रूप से। उनका महत्व सिर्फ स्टोइक दर्शन को बचाने में नहीं है, बल्कि ये दिखाने में है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आत्मचिंतन और नैतिक सिद्धांत हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें संभाल सकते हैं,
दर की ओर देखने का रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन, उनके वो निजी नोट्स, मेडिटेशंस, शायद हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या हम बाहरी उथल पुथल के बीच अपने अंदर शांति खोज सकते हैं? क्या हम मुश्किलों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं? क्या हम जीवन की जो अनिवार्य कठिनाइयां हैं, उनका सामना गरिमा और संतुलन के साथ कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ बड़े नेताओं या सम्राटों के लिए नहीं है, हम में से हर उस इंसान के लिए हैं जो एक मीनिंगफुल, एक सार्थक और नैतिक जीवन जीना चाहता है। शायद यही मार्कस ऑरेलियस की सबसे स्थायी विरासत है, खुद को लगातार बेहतर बनाने और अच्छे गुणों की खोज में लगे रहने का आह्वान। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।